नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। स्वागत करता हूं मैं आप तमाम लोगों का इस शो जिसका नाम है क्राइम फ्लिक्स। पिछली दो कहानियां काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले, कुछ सजेशंस भी मिले। उम्मीद करूंगा कि वो इम्प्लीमेंट हो आपकी सजेशंस। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले एक क्विक न्यूज़ अपडेट मैं देना चाहता हूँ। मुझे लगा ये न्यूज़ शायद आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो इस हफ्ते काफ़ी कुछ न्यूज़ सुनाई में आ रहा है, आपको पता ही चला होगा, एंटरटेनमेंट के लिहाज से या फिर स्पोर्ट्स के लिहाज से, इंडियन पॉलिटिक्स। वैसे ये जो न्यूज़ है वो आ रही हैं पाकिस्तान से, क्योंकि कुलदीप यादव, एक भारतीय जिसे 28 सालों बाद पाकिस्तानी जेल से रिहा कर दिया गया है, आज वो अपने परिवार के साथ है। काफ़ी अच्छा लगा सुनकर, देखकर, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। जो भी कैदी हैं वो ख़ासकर पाकिस्तान में, उनका ज़िंदा लौट आना काफ़ी खुश कर देता है। बिकॉज़ कुलदीप यादव जो थे वो कोई एजेंट या फिर कोई जासूस नहीं थे, वो सरबजीत सिंह जैसे ही थे। आपको याद होगा हाल ही में 8-10 साल पहले ही सरबजीत सिंह का देहांत हुआ था पाकिस्तानी जेल में, तो वो उसी जेल में थे। उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में उनके इंटरेक्शन के बारे में सरबजीत सिंह के साथ, कैसा उनका बॉन्ड था जेल में, और उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस भी बताया वहाँ पर, टॉर्चर और वो सब। दिल दहलाने वाली कहानी थी वो, मैंने सुना उनका इंटरव्यू, इमोशनल था काफ़ी कुछ, क्योंकि उसमें उनकी जो बहन है उनके स्ट्रगल के बारे में बताया गया कि 28 सालों से, टिल 1997 टू 2022 उन्होंने कितना कुछ झेला, क्या उन्होंने कोशिश करी है इंडियन आलाकमान से और पाकिस्तान के तरफ से भी। बहरहाल खुशी की बात यह है कि आज वो अपने परिवार के साथ हैं, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी हेल्प करेगी सामने। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। वैसे आपने देख ही लिया होगा टाइटल, आज की कहानी मिस्ट्री या टाइम ट्रैवल। दरअसल ये जो टाइम ट्रैवल है ये कोई कल्पना नहीं है, कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आज के लिए, क्योंकि अभी वैज्ञानिक इस बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं इसलिए। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं हुई हैं इस दुनिया में जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है। इन्हीं बीच टाइम ट्रेवल की बहुत सारी ऐसी कहानियां भी हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ असलियत है, कुछ सत्य घटना है जिसके रिकॉर्ड्स है बाकायदा। उन्हीं में से एक आज की ये कहानी। सो वक्त था 19 जुलाई 1954, तकरीबन आज से 67-68 ईयर्स पहले, 1954, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम है हैनेडा एयरपोर्ट। काफ़ी बिजी एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ एक तो टोक्यो में, ऊपर से स्ट्रेटेजिकली और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ फ्लाइट्स वगैरह जो हैं वो उड़ान भरती हैं और लैंड करती हैं। अब क्योंकि जापान के, आप अगर मैप देखेंगे तो जापान के जो साइड में है उसके, अगर हम आगे जाते हैं जापान के आगे तो आपको प्रशांत महासागर मिलता है, और उसके बाद फिर यूएसए और कनाडा, ये सारी चीज़ें। उस लिहाज से काफ़ी बिजी एयरपोर्ट भी है जापान का आज भी। तो दिन था 19 जुलाई, हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक फ़्लाइट लैंड होती है जो यूरोप से आती है, और कुछ मुसाफिर थे उसमें, पैसेंजर्स। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक ऐसा पैसेंजर्स हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आता है जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं, कई लोगों का दिमाग चलना बंद कर जाता है, क्योंकि उस दिन 19 जुलाई को जब ये प्लेन जो है वो लैंड करा एयरपोर्ट पर, उसके बाद जो कस्टम्स ऑफिशियल्स और जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ था, वो अधिकारी थे जो पासपोर्ट और वीज़ा की चेकिंग करते हैं, वो अपना काम कर रहे थे, सारे अन्य मुसाफिरों का चेक, जो पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो चेक कर रहे थे। सो इसी में एक मुसाफिर उनके सामने बढ़ता है, लाइन में लगा हुआ था, उसका नंबर आ गया, वो अपना पासपोर्ट जो है वो डेस्क पे रख कर चेक इन करता है। तो जो अधिकारी थे वहाँ पर, वो उसके पासपोर्ट को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब वो शॉक इसलिए होते क्योंकि जो जिस शख्स का ये पासपोर्ट था वो कोई रिकग्नाइज पासपोर्ट नहीं था, ऐसा पासपोर्ट उस अधिकारी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब बिकॉज ऑफ दुनिया में 195 से ज़्यादा मुल्क हैं, सो ऑब्वियसली आप हर किसी का पासपोर्ट तो देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि आप इतना लंबा करियर जो है वो आप एयरपोर्ट पर आप रहते हैं और आप पासपोर्ट जो है वो चेक वगैरह करते हैं, सो आपको पता चल जाता है, बकायदा वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स होता है कौन से कंट्री का कैसा पासपोर्ट है नॉल। लेकिन वो जो पासपोर्ट था उस आदमी के पास, उस शख्स के पास, वो कोई पहचाना हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ किसी और ही कंट्री का है। सो जो अधिकारी थे वो देखकर जो चौंक जाता है, उसके बाद वो चेक करता है अंदर पेजेस, तो जो आदमी था फ़ोटो मैच कर जाती है, नाम वगैरह सब कुछ ठीक। और मज़े की बात ये कि जो पासपोर्ट है वो जेन्युइन, ऐसा भी नहीं कि कोई फ्रॉड है या कुछ फॉल प्ले है। सो वो देखकर जो है वो हैरान हो जाता है। उसके बाद वो शख्स से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए हैं। उसके बाद जो वो शख्स कहता है, उसके बाद तो ऑब्वियसली वो जो अधिकारी था उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल जब ये उससे पूछा गया कि वो कहाँ से आया, तब उन्होंने अपने देश का नाम बताया, टॉरेट, TORED, टॉरेट। अब हैरानी की बात ये कि ऐसा देश ना कि अभी और ना ही 1954 में मौजूद था। सो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, जो पासपोर्ट चेक कर रहे थे उन्होंने अपने आला अधिकारी को बताया, सीनियर्स को बताया। जब उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे पास एक ऐसा आदमी आया है जिसका पासपोर्ट मैंने कभी देखा नहीं, और वो जो शख्स जो दावा कर रहा है वो इस देश से है, उसका नाम मैंने कभी सुना नहीं, तो जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, वो कहते हैं उस ऑफिसर को कि आप उसे रोक के रखें, हम आते हैं, हम चेकिंग करते हैं। बहरहाल वो शख्स को बकायदा वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है उसे। उसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं हैनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उस जो ऑफिसर था उसके जो सीनियर्स हैं, वो जब आते हैं तब तफ्तील से उसकी जानकारी लेते हैं डिटेलिंग में कि क्या नाम है और कहां से वो आया है। सो जब वो उसे पूछताछ चालू करते हैं तब वो भी हैरान, क्योंकि वो शख्स कंटिन्यूसली ये कहता है कि नहीं, मैं तो टॉयलेट से आया हूं और ये मेरा देश है, और आप पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे, क्योंकि मैं तो अन्य जगह पे जो है वो सफ़र करता हूँ, मैं अभी अभी यूरोप से आया हूँ। और जब उसका जब पासपोर्ट चेक हुआ, जब अंदर उस दिखा गया ऑफिसर्स की तरफ से, तब वाकई वो जो शख्स था उसके बकायदा पासपोर्ट में इंग्लैंड का वीज़ा लगा हुआ है, बाकी और अन्य यूरोप कंट्रीज़ का, और वो भी बिल्कुल जेन्युइन, शक की कोई गुंजाइश नहीं। अब क्योंकि वो जो वीज़ा रहता है वो देखकर ही पता चल जाता है ऑफिशियल्स को कि वो सच है या फ्रॉड है। सो अब जो सीनियर है वो भी दंग रह जाते, क्योंकि कंटिन्यूसली आदमी कहता है कि मैं टॉरेट से आया हूँ। अब उनको भी ये समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा तो देश का नाम उन्होंने सुना नहीं। तो उन अधिकारियों में से जो उनका एक जो सीनियर ऑफिसर रहता है, उनमें से जो एक ऑफिसर है, वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जिस देश से आए हैं आप हमें उसकी लोकेशन बताइए। अब लोकेशन बताने के बाद इन द सेंस कि वो जो वर्ल्ड मैप है वो लेके आता है, उसे रखा जाता है टेबल पर, और वो शख्स जो है वो बैठा हुआ था उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आप बताइए कि आपका जो कंट्री है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जो बंदा है वो देखता है यूरोप का नक्शा, और नक्शे में देखने के बाद तुरंत ही वो एक जगह पर पॉइंट करता है, तुरंत अपने देश को पहचानना पहचान में आ जाता है उसको कि वो कहाँ से आया हुआ है। अब जब वो जो शख्स है वो जिस जगह पॉइंट आउट करता है कि वो यहाँ से आया है, उसे देखकर लोग और दंग हो जाते हैं। जितने भी ऑफिशियल्स जो भी ऑफिसर्स वहाँ थे और जितना भी स्टाफ वहाँ मौजूद था, वो लोग एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। और जो बंदा था, जो शख्स था, वो काफ़ी कैजुअल था, नॉर्मल था, क्योंकि वो सच बोल रहा था। अब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी तस से मस नहीं, क्योंकि जो सच बोलता है अमूमन उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो नॉर्मल ही रहता है, पैनिक नहीं करते हैं। लेकिन जिस जगह पर उसने पॉइंट आउट किया था कि वो उस देश से आया हुआ है, ऑफिसर्स शॉक्ड, सब शॉक्ड, कोई कुछ नहीं कहता। सो कौन थी वो जगह, कौन सी थी वो जगह, कहाँ से वो आया था, और ये शख्स कौन है, और इसके साथ आगे क्या हुआ, और ये जापान में क्या कर रहा था, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के दूसरे एपिसोड में। तब तक आप बने रहें, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। और हमेशा की तरह अगर आपको कुछ लगता है कि जो मुझसे कुछ गलती हुई है, या फिर मैं कुछ और आपको इस बारे में बताऊँ या ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ, तो आप ज़रूर मुझे बताएं, आपका फीडबैक काफ़ी वैल्यूबल। सो आगे की कहानी जो है वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहें, आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।